गोरख महला पहला कर पहला मन हाली किरसाणी करनी सर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेत मन हाली किरसाणी करनी सर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जम से कर पागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोया बिरला बुझै कोई रहाओ खान हट कर यार जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर पांड साल जिस विच तिसनो रख वण जा रहा क्यों वणज कर लैला मन हस सुन सासत सौदागरे सत कोड़े लै चल खर्च बन सिंगिया मत मन जान है कल निरंकार कै देश जाहे ता सुखल है महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदिया कर तावणी ताको आख है तन नानक वेख नजर कर चढ़ चवगण बन
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहसं गुर प्रसाद जप सद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती थी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप साध सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप साध सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच
सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा मेहर बख्शिश के साथ सारी संगत श्रद्धा प्रेम के साथ बोलो सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे। शब्द पहले पातशाह आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र मुखार बिंद से पवित्र रचना से पवित्र हृदय से पवित्र अति पवित्र हृदय स्थित परमात्मा की ज्योत से उच्चारण हुआ है। ऐसे ही समझो कि आप परमात्मा गुरु नानक के स्वरूप को धारण करके इस कलयुग के समय में हमारे तुम्हारे दरमियान में प्रकट हुए। परंतु कलयुग के समय में अर्थात परमात्मा का संबंध केवल कलयुग से ही नहीं हुआ, परमात्मा आज के युग में ही नहीं, परमात्मा सदा से है। जिस परमात्मा ने कलयुग में गुरु नानक का रूप धारण किया उसी परमात्मा ने अलग अलग युगों में समय में अलग अलग रूप धारण किए। गुरबाणी के अंदर ही आता है, सतजुग तय माण्यो छल्यो बल बामन पायो, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतारत कियो, उग्र सैन कौ राज अपै भगत जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। के परमात्मा जिसने सतयुग के अंदर बावन भगवान कहलाया, वही परमात्मा त्रेते के अंदर राम भगवान कहलाया, वही परमात्मा द्वापर के अंदर कृष्ण भगवान कहलाया, और वही परमात्मा आज कलयुग के अंदर गुरु नानक कहलाया, और वही गुरु नानक गुरु अंगद गुरु अमरदास कहलाए। हर जियो नाम परयो रामदास, वही गुरु रामदास कहलाए। करण गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो, पर पन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रत्यक्ष हर, वही हरि परमात्मा गुरु अर्जन देव कहलाए। इसी तरह वह परमात्मा जो गुरु नानक के हृदय में उतरे, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। दसों गुरु साहिबान के हृदय में वह ज्योत आगे के आगे गुरु कृपा से प्रकट होती रही। ज्योतोहा जुगत साहे सह काया फेर पलटिया, ज्योत वही परमात्मा की लेकिन काया शरीर इसमें अंतर आता रहा, ज्योत में नहीं। परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, परमात्मा अबदल है, ज्यों का त्यों है, एक रस है। उसी एक रस परमात्मा को ही महापुरुष आत्म लेता गुरुजन हमेशा हृदय में बसा करके रखते हैं। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वे। जुगों जुगों में जो अपने एक ही स्वरूप में स्थित है परमात्मा, किस स्वरूप में? सत चित आनंद स्वरूप में। उस परमात्मा को महापुरुष जन गुरु नानक साहेब नमस्कार कर रहे हैं, अर्थात हमें भी उस परमात्मा की ही पूजा अर्चना भक्ति ध्यान करना है, जो सदा से है, अबदल है, जो सब में है, जो सब जगह पर है और सत चित आनंद है। उसी का ध्यान, उसी का नाम, उसी की भक्ति मोक्ष का हेतु होगी, मोक्ष दाती होगी। जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे, दुख सब कट जाएंगे, सुख सब प्राप्त हो जाएगा। तभी जब सुख स्वरूप परमात्मा, जो के सुख स्वरूप आत्मा के रूप में हमारे तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है, उसकी पूजा करेंगे तब। आत्मा देव पूजिया होर्थ है सुख ना पाल, महापुरुष एक जगह कहते हैं गुरबाणी के अंदर कि आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा का ही ध्यान करो, बिना आत्मा की पूजा के तुम्हें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा की पूजा के बिना अगर कुछ सुख महसूस करते भी हो तो वो तुम्हारे मन की ही एक कल्पना है, जिस कल्पना के आधार पर सामने तुम्हारी ही भावना के मुताबिक कुछ बन जाता है और तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाता है, टिक जाता है। उस टिके हुए मन में सुख फिर आत्मा का ही है, परमात्मा का ही है। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, वहां से आया जहां मेरा मन लगा हुआ है। लेकिन जहां जहां मन लगा हुआ है वो तो संसार है, वो तो परमात्मा द्वारा रचित है, किया हुआ है। करते की मित क्या जानना किया, लेकिन करतार को किया हुआ कैसे जान पाएगा? अंधकार ज्ञान को कैसे जान पाएगा? एक सोया हुआ इंसान जागे हुए को कैसे जानेगा? नहीं, जागा हुआ इंसान ही खुद अपने आप को भी जानता है और सोए हुए को भी जानता है। तो वो परमात्मा, वो आत्मा जागदी ज्योत खुद ज्ञान स्वरूप है और सारे विश्व का, सारी कुदरत का भी ज्ञान उसी को है। उस परमात्मा की पूजा, उसी की भक्ति, उसी का नाम, उसी का आनंद हमें तुम्हें प्राप्त करना है। और प्राप्त होता कैसे है? सब में जोत जोत है सोए, जिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। भले वो परमात्मा आत्म रूप से हमारे तुम्हारे सबके दरम्यान में मौजूद है, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक का आप नहीं कछ परम, लेकिन गुरु साखी ज्योत प्रगट हुए। जब गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश हृदय के अंदर श्रद्धा और प्रेम से बस जाता है, तब वह ज्योत प्रगट होती है। तब अंधकार, अज्ञान, आवरण, भ्रम, अहंकार दूर होता है और ज्योत के दर्शन होते ही जीवन मुक्त हो जाता है वह इंसान। ये बात नहीं कि दर्शन होते नहीं, दर्शन होते हैं। सुन वड्डा आख है सब कोए, केवट वड्डा दीठा होए। हम तुम सुनकर परमात्मा को बड़ा समझ रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं या मानते हैं अंदर से, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ऐसे केवल मानने मात्र से, अर्थात मन की मान्यता से जो तुझे प्राप्त हुई है अवस्था, वो अवस्था सदा रहने वाली नहीं। गुरु कृपा से तेरे को जो अवस्था प्राप्त होगी वो सदा रहने वाली होगी। गुरु का उपदेश जब तक तू धारण नहीं करेगा, जब तक उसकी कमाई नहीं करेगा, कमाई क्या, उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक जन कै सद काम। जब तक तेरा जीवन ऐसे नहीं होता, तब तक उस ज्योत के दर्शन नहीं हो सकेंगे। और बिना परमात्मा के, आत्मा के दर्शन हुए, हमें संसार के दर्शनों की चाह लगी रहती है। केवल दर्शनों की ही नहीं, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, फिर प्राप्त करने के लिए कर्म भी करते हैं, और फिर कर्म करते हुए अहंकार भी धारण करते हैं। तो जहां अहंकार आ गया, वहां फिर जन्म खड़ा हो गया, वहां फिर जीवन जो है दुखी हो गया, विचलित हो गया, चलायमान हो गया अहंकार के आ जाने से। जैसे ही अहंकार मिटता है, इंसान को परम शांत अवस्था प्राप्त होती है। अहंकार मिटे कैसे? हमें नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे इकठाए। अहंकार का और नाम का आपस में इतना विरोध है कि दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। जैसे दो विरोधी घरों में देखते हो कि इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे इस घर में, इस शरीर में, इस मन के अंदर, इस हृदय के अंदर भी जहां अहंकार है, ईगो है, वहां परमात्मा का नाम नहीं रह सकता। और जहां नाम का जाप, सिमरन, लेव धुन लग गई, प्यार हो गया परमात्मा से, वहां अहंकार नहीं रहेगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अहंकार दूर हो जाएगा। अहंकार के दूर होते ही परमात्मा के नाम का सिमरन जो है वो अनहद अवस्था में बदल जाता है। अनहद, जिसका कभी हद बाद ना हो, जो कभी बंद ना हो, ऐसा सिमरन जो लगातार ही हो जाए, जो निरंतर हो जाए, उस सिमरन के अंदर, निरंतर सिमरन के अंदर ही परमात्मा की आत्मा की खुशी है। उससे पहले पहले हमारा जीवन जो है एक साधक का हो सकता है, यानी जो इंसान चल रहा है, जो साधना कर रहा है, एक भगत का हो सकता है, जो भक्ति कर रहा है, लेकिन पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त होने पर मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्याग है, फिर इतनी भी इच्छा नहीं रहती कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले, ये भी इच्छा नहीं रहती। इच्छा जहां पैदा हुई वृत्ति वहां ही खड़ी हो गई, तो ऐसे समझो कि एक साफ कागज पर वहीं लकीर खींच गई। तो जहां लकीर खींच गई वहां परमात्मा नहीं होंगे, होंगे लेकिन दर्शन नहीं होंगे, ना हुए के बराबर उस इंसान को हो जाएंगे। जहां मन बिल्कुल पवित्र बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल निष्अहंकार अवस्था हो गई, वहीं परमात्मा ने प्रकट होना है। तुम कहो कि लाइट भी जलती रहे और अंधकार भी रहे, ये इकट्ठे तो नहीं होंगे। परमात्मा तो पवित्र अति पवित्र है, सुख स्वरूप है, निरीक्षित अवस्था के अंदर प्रकट होता है। और जहां इच्छा कुछ भी हो जाती है वहां साधक या भगत जन हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जन होना, उसका हृदय बिल्कुल साफ पवित्र हो जाएगा। और बिल्कुल पवित्र हृदय के अंदर ही आत्मा के दर्शन है, अर्थात फिर वो परमात्मा को अपने से जुदा नहीं देखेगा, वो परमात्म स्वरूप ही हो गया होता है। अब जुदा देखने वाला वहां खो गया होता है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। भगत जन परमात्मा को कहते हैं कि जब मैं था अहंकार था तो मालिक तू नहीं था, और आज तू अगर आ गया है तो मैं नहीं रहा, यानी तेरे से जुदा मैं नहीं रहा। तो जुदाई जो है हमने बनाई हुई है खुद, और खुदा ने तो परमात्मा ने तो जैसे ही हमें बनाया हमारे साथ था, है अभी भी है, ये नहीं कि केवल था ही और आज नहीं है। वो तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच, सदा ही है, सदा हमारे अंग संग है, सदा हमारा रक्षक है, सदा हमारा प्रतिपालक है, सदा हमारा दाता है। उसी के आश्रय पर तो हम चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अनुभव हो जाता है तो उसके आश्रय चल रहे हैं वो इंसान इस भक्ति के माध्यम से जीवन मुक्त हो जाता है। जहां इसने अपना अहंकार अपना बल छोड़ा, वहीं परमात्मा का जो बल है तान है जोर है शक्ति है इसमें प्रवेश कर दो। आज गुरु नानक के अंदर जिनका ये शब्द हमने ये पढ़ा, जिसको विचार करने के लिए हम जा रहे हैं गुरु कृपा से, उस गुरु नानक के हृदय के अंदर वह तान वह जोर परमात्मा का है। लेकिन वो तान वो जोर होते हुए भी और गुरु नानक इस संसार में आकर के मातलोक में आकर के सब कार्य करते हुए भी, भलाई का कार्य करते हुए भी, सदुपदेश देते हुए भी क्या कहते हैं, हाँ ताड़ी बेकार कार्य लाया, कि मैं बेकार निकम्मा कुछ भी करने को मेरे में समर्थ ताकत तान बल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे काम पर लगा दिया, इस काम पर भलाई पे, कि तू जीवों को सदुपदेश दे, जो अंधकार में फंस गए जो मोह माया के जाल में फंस गए हैं उनको सदुपदेश दे, सत्य का उपदेश दे। तो परमात्मा के हुक्म के मुताबिक गुरु नानक ने सत्य उपदेश हमें दिया। खुद पर कह रहे हैं गुरु नानक पर कि मेरे में शक्ति परमात्मा का उपदेश देने की नहीं है, परमात्मा की शक्ति ही मेरे अंदर आज ये काम कर रही है। अर्थात अपना बल खत्म हो गया ना, इतना भी अहंकार नहीं कि मैं परमात्मा से अभेद हूं या परमात्मा मेरे इतने नजदीक हैं, इतना भी अहंकार नहीं रहा। और हम तो पता नहीं परमात्मा को कितना दूर करके बैठे हैं, हम करके बैठे हैं लेकिन वो दूर नहीं हुआ, हमारे दूर करने से वो दूर होगा नहीं, लेकिन समझते हैं कि शायद दूर है, चलो कहीं बल कहीं छल कहीं कपट कहीं ठगी कहीं बेईमानी कहीं झूठ, समझते हैं कि दूर है, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन वो दूर है नहीं, वो तो हर हरकत को देख रहा है। अगर वो हमारे समझने से दूर हो गया होता तो बुराई का फल बुरा या दुख हमें कैसे मिलता। इसका मतलब बुराई के समय भी परमात्मा नजदीक ही था, जिसने कि हमारे कर्मों को हमारे ख्यालों को हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होते हुए ख्यालात को देखा, अच्छे या बुरे, उसका फल सुख या दुख दे रहा है, तभी तो कि वो सदा है हमारे अभेद ही है, हमसे अभेद ही है, दूर नहीं है। अगर कहीं भी थोड़ा भी दूर होता तो हम तो पता नहीं क्या का क्या कर देते। आज दूर नहीं है लेकिन फिर भी क्या कुछ कर रहे हैं जो के प्रमाणित नहीं है शास्त्रों में, जो के शास्त्रों के सत्संग के गुरुओं के अनुकूल नहीं है। तो हमें गुरुओं के सत्संग के अनुकूल चलना है, ऐसे जीवन बनाना है जैसे महापुरुष गुरुजन कहें। जब हमारा जीवन इस तरह का होगा तब परमात्मा के दर्शन है। उस परमात्मा के दर्शन के जो हमारे दर्शन तो कर ही रहा है, हमारे दर्शन परमात्मा कर रहा है, हमारी हर हरकत को जो देख रहा है, हमें भी देख रहा है, लेकिन हम भी उसके दर्शन कर लें तब दर्शन पूरे होंगे, नहीं तो दर्शन अधूरे। मैं तो आपको देखूं लेकिन आप मुझे ना देखें तो दर्शन कहां हुए, पता ही नहीं चलेगा कि दर्शन के मुझे वो मिला। जब हम कहते हैं फला आदमी मुझे मिला, तभी हम कह सकते हैं जब आमने सामने हो गए, या उस मिलने का सुख आनंद तभी है जब आमने सामने हो जाए। तो ऐसे ही परमात्मा से आमने सामने जब हो जाए, हमारी जब बातचीत उसके साथ हो जाए, हमारा हर ख्यालात, हर हमारा ध्यान, हर हमारा उठता हुआ संकल्प परमात्मा की याद में अगर होगा तो समझो कि हम आमने सामने हो गए। आमने सामने क्या, समझो एक ही जल के अंदर तरंगे उठ रही हैं सिर्फ, और तरंग जो है वो जल का ही रूप है। तो ऐसे परमात्मा आत्मा के आमने सामने होना यही है कि इस जगत को फिर खेल मात्र ही जानना, लीला मात्र ही जानना, स्वप्न मात्र ही जानना, इसमें ज्यादा अटकाव ना हो, इसमें से गुजर जाए अपने फर्जों को अदा करते हुए। लेकिन जहां संसार में फर्ज हमने माने हुए हैं, वहां फर्ज हमारे कुछ और भी हैं, जिन फर्जों को के गुरु नानक साहिब अदा कर रहे हैं। फर्ज ड्यूटी, यानी के जो ड्यूटी परमात्मा ने हमारी लगाई है वह महापुरुष ही अदा कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर रहा। अर्थात जो भी उस ड्यूटी को अदा करता है वो महापुरुष हो जाता है, वो गुरु हो जाता है, वो संत हो जाता है, उसे कुछ भी कहो वो उस अवस्था का मालिक हो जाता है, सत्य प्राप्त की अवस्था अर्थात आत्म पदवी, आत्म साक्षात्कार उसी जन को होता है जो इस संसार में रहते हुए इस मानव शरीर को सफल कर ले। पही प्राप्त मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की एक रिबरिया। जो ऐसे चले, जब हम ऐसे चलेंगे तो समझो कि गुरु की कृपा, गुरु का बतलाया मार्ग, गुरु की कृपा से उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तभी हमारा जीवन सफल है, तभी हमारे ये अमोलक जो स्वास हैं वो सफल हैं, अन्यथा नहीं। और अगर नहीं तो अरदास करें परमात्मा के आगे कि महापुरुष गुरुजन का मिलाप कराए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही संत गुरु का मिलाप होता है, और संत गुरु की कृपा से ही परमात्मा का मिलाप होता है, और दोनों एक ही हैं, फर्क नहीं। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। जो गुरु को परमात्मा को भाता है, अच्छा लगता है, वो हमें परवान होना चाहिए हस्त, यानी ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, उनके हुक्म के बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो जो हो रहा है उसके अंदर हम राजी रहना शुरू हो जाएं, तो समझो हम परमात्मा को भा रहे हैं। अर्थात परमात्मा की, गुरु की मर्जी जो है हमारे जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाए, और अपनी मर्जी, अपनी डिजायर, इच्छा जो है वो थोड़ा कम करते चले, कम अपने आप ही हो जाएंगी जैसे ही हम परमात्मा की इच्छा के मुताबिक चलने शुरू हो गए कि जैसे तू रखता है मैं राजी हूँ, जो तू देता है उसी में राजी हूँ, जहां भेजता है वहीं जाने को तैयार हूँ। एक नौकर की अपनी स्वतंत्र क्या मर्जी, परमात्मा की मर्जी के बिना हमारी कोई मर्जी नहीं चल सकती, क्यों? परमात्मा की सत्ता, चेतन सत्ता, आत्मिक सत्ता एक ही है, यथार्थ एक ही है, दो तीन तो हो नहीं सकती। तो वो यथार्थ एक जो है, आत्मिक सत्ता एक जो है, परमात्मा की मर्जी जो है वही अटल है, वही हो रही है, वही होगी। आपन किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। जो परमात्मा चाहता होता तो वह है, तो फिर हम अपना क्यों कहें कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों हो गया। जो हो गया उसको हंस करके अब झेलो, अपने किए हुए कर्म का फल समझ लो, परमात्मा का हुक्म समझ लो, उसका भाना समझ लो, उसकी खुशी समझ लो कि वो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है, कुशल है, स्याना है, वो जो कर रहा है अच्छा ही है। उसकी स्यानप के आगे अब मैं अपनी स्यानप क्या लगाऊं? जहां मैंने अपनी कुछ लगा दी वहीं बल्कि वो दुख का कारण हो जाएगी, और उसकी जो इच्छा है वो तो सुख का कारण है। जैसे ही उसकी इच्छा में हमारा मन बहना शुरू हो गया, हमारा जीवन चलना शुरू हो गया, हम सुख सागर में एक हो जाएंगे। नदी नाले जब चलते हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं, मैदानों से गुजर रहे हैं, तो रास्ते में कितने कष्ट झेलते हैं। कहीं लोग उन्हें काट लेते हैं, अपने खेतों में लगा लेते हैं, कहीं लोग पानी को रोक लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में पत्थर, झाड़, पहाड़ सबसे टकराते हुए कहां पहुंच जाते हैं? समंदर में, अपने धुरे पर, अपने मूल अस्तित्व में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचता है कोई भी नदी नाला, कोई भी पानी, तो जैसे ही वहां पहुंचता है परम शांत हो जाता है, उसी का रूप हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी जीवन में से जब गुजर रहे हैं तो दुख सुख इत्यादि सब कर्मों का फल परमात्मा के हुक्म के अंदर हमें आ रहा है, मिल रहा है। लेकिन जैसे इसको झेलना शुरू कर देंगे, सहारना शुरू कर देंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश, उसके साथ हम अपने ध्यान को बराबर जोड़े रखेंगे तो एक दिन परमात्मा रूपी समुन्दर में, आत्मा रूपी समुन्दर में, सुख रूपी समुन्दर में समा जाएंगे, उसी का रूप हो जाएंगे। उससे अलग अपना कोई भी नाम रूप नहीं रहेगा। जब तक अलग नाम रूप है तब तक दुख सुख इत्यादि हैं। जब अलग से परमात्मा से अलग कोई नाम रूप ना रहा तो दुख सुख सब खत्म हो जाएंगे, सुख सब रूप में स्थित हो जाएंगे। उससे बड़ा और तो कोई सुख है ही नहीं। उस बड़े से बड़े सुख को प्राप्त करवाने के लिए ही गुरु नानक साहिब जो उपदेश कर रहे हैं उसका विचार सतगुरु महाराज की कृपा से इस शब्द के माध्यम से हम करते हैं।
सोरठ महला पहला कर पहला।
सोरठ राग के अंदर गुरु नानक साहिब उच्चारण करते हैं कर पहला, पहली तार के अंदर इस शब्द को गायन किया गया करना है।
मन हाले किरसाने करणे धर्म पाणे तन खेत।
कहते हैं कि गुरु नानक साहिब को एक बार पिता कालू ने कहा कि तुम घर में ऐसे ही पड़े रहते हो, सुस्त पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं, इतिहास आप सब लोग जानते हो बहुत, इतिहास में इतना मन को नहीं उतारना, यथार्थ में अपने मन को हमने लेके जाना है, इतिहास शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और फिर नबेड़ा होता यथार्थ से ही है, इतिहास से नहीं। इतिहास मतलब उस महापुरुष के साथ उस समय जो घटना घटी वो तो घट गई उसके साथ। अगर चोर आया कबीर के पास लड़की के साथ सुला दिया तो वो तो घटना घट गई। अगर रविदास की झोंपड़ी को आग लग गई वो तो घटना घट गई। अगर गुरु नानक ने ऐसे कार्य किया या नहीं किया ये तो उसके साथ घट गया जो हो गया। अब तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो घटना तुम्हारे साथ घटेगी वो एक विलक्षण ही होगी, वो एक नई ही होगी। ये नहीं कि उसी घटना से तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हो। यानी चोर आए और तुम अपनी लड़की का साथ सुला दो तुम कबीर पदवी को प्राप्त कर सकते हो, ये बात नहीं। गुर कहे आता कार कमावो, गुर की करणी काहे तावो। गुरु ने जो किया, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष भगत जन जो किया उन्होंने, वो तुम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया तुम जानते ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, हम तो अपनी दृष्टि से उसको देखेंगे। उसने अपनी ब्रह्म दृष्टि में उस बात को किया, खेल मात्र किया। तो ऐसे ही गुरु नानक घर में अगर पड़े हैं, पिता को लगता है कि सुस्त है, नकारा है, कुछ करता नहीं, वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, उपदेश करता है कि उठ खड़ा हो, कुछ कार्य कर, धन दौलत कमा कर लाओ, अब जवान होते जा रहे हो, तुम खेती बाड़ी ही करो, पढ़ाई लिखाई तो तुमने कुछ की ही नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा तो उस्ताद को पढ़ा करके आ गए, तो तुम तो ऐसी विचित्र हरकतें कर रहे हो। वो कहता है ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बाबा कालू उनके पिता उनको नहीं जान रहे थे कि वो परमात्मा हैं। वो जो चाहे सो कर सकते हैं, जो उनसे उनका मालिक करवा रहा है वो तो वो कर रहे हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई कर ही नहीं सकता, वही कर सकता है जिसको परमात्मा स्वयं करवाता है। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। तो अब बाबा कालू जी पिताजी उनके क्या कहते हैं कि तुम खेती करो। अब गुरु साहब क्या कहते हैं, उस खेती का जिक्र कहते हैं कि हम खेती कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही लेकिन मैं तो कर रहा हूं मालिक के हुक्म के अंदर खेती। वो खेती क्या है उसका जिक्र करते हैं कि मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। ये तन, ये शरीर, मनुष्य जीवन जो मुझे मिला है, इस शरीर को मैंने खेत बना लिया। खेत यानी कि जमीन जहां फसल होती है, मैंने इसको खेत बना लिया। और मन को हाली बना लिया, उस खेत के अंदर क्या करते हैं, हाली जो होता है हल चलाता है, मिट्टी को उखाड़ता है, उसके बाद फिर उसमें पानी छोड़ता है, उसके बाद उसमें सुहागा फेरता है, फिर बीज बोता है, फिर कहीं जाकर के वो खेती होती है, फिर उस खेती की रक्षा करनी होती है, परवरिश करनी होती है, नहीं तो जानवर ही खा जाए उस खेती को, तब जाकर के वो खेती फल देती है यानी लाभ होता है उससे। तो ऐसे गुरु साहब कहते हैं कि ये शरीर जो है खेत के माफक है, इसमें मन जो है हाली है, हल चलाने वाला, यानी मन को जोड़ करके नाम के साथ परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। और इसमें पानी क्या है, मैं बहा रहा, शर्म के बुरे कर्मों से लज्जा रखनी, शर्म रखनी, अर्थात बुरे कर्म ना करने, किसी को दुख ना देना, किरसानी करनी। और किरसानी खेती मेरी क्या है कि शुभ करनी, इस शरीर के साथ भलाई का काम करना, सुख का काम करना। भलाई का सुख का काम कौन कर पाएगा, जिसका पहले खुद भला हो चुका है। खुद भला कब होगा, जब हमारा मन नाम से एक होकर नामी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ये शुभ करनी कर रहा हूँ, ये किरसानी कर रहा हूँ, मेरी तो ये खेती हो रही है। गुरु नानक साहब अपने पिता से ऐसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम भी देखें कि संसार में जब चल रहे हैं तो इस शरीर से, इस मन से ऐसे काम ले रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, इसको खेती समझा, मन को नाम से जोड़ करके और बुरे कर्मों से, बुरे ख्यालात से मन को रोका कि ख्याल आ जाते हैं कि ख्याल ही नहीं बल्कि कर्म भी कर बैठते हैं। अगर कर बैठते हैं तो ये खेती नहीं हो रही, अगर ये नहीं हो रही तो जीवन सफल नहीं हो रहा। तो जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु नानक साहिब इस उत्तम खेती का जिक्र करते हैं जो इस शरीर मन इत्यादि के साथ करनी है।
नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश।
अब गुरु साहब कहते हैं कि इसमें, इस खेती जो तैयार की हमने, जिसमें हल चलाया, पानी छोड़ा, अब इसमें बीज हम कौन सा बीज रहे हैं, नाम का। संसार में जैसे खेती करते हैं तो जिस फसल को, जिस फल को चाहते हैं उसी का बीज बोते हैं। अगर हम गेहूं चाहते हैं तो गेहूं का बीज ही बोएंगे, चावल चाहते हैं तो चावल का बीज ही बोएंगे, जीरी बोएंगे, आम चाहते हैं तो आम का बीज, वो गुठली ही बोएंगे। अब गुरु साहब तो अपने जीवन को सफलाने के लिए, परमात्मा को मिलने के लिए नाम का बीज बो रहे हैं कि नाम से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो फल चाहिए, फल उनको नाम चाहिए था, नामी परमात्मा, तो इसलिए परमात्मा के नाम का बीज बो रहे हैं। अर्थात इस तन से, इस मन से, इस मुख से, इस रचना से परमात्मा के नाम में ही स्थित है, ये नाम बीज बो रहे हैं। नाम बीज संतोख सुहागा, सुहागा फेरते हैं, फिर हल चलाने के बाद बीज बोने पर सुहागा फेरते हैं कि बीज ठीक बैठ जाए धरती के अंदर। ये ना हो कि धरती में हल चलाओ, बीज गिरो और छोड़ दो, फिर तो बीज पंछी खा जाएंगे, जो बीज ऊपर ऊपर छोड़ा और पंछी खा गए। सुहागा फेर दिया तो ऊपर मिट्टी आ जाए, बीज मिट्टी में दब जाए तब वो फूटेगा, झाड़ बनेगा, फल लगेगा। तो अगर नाम ऊपर ऊपर ही रखा, मुख से ही रखा, ध्यान वहां ना गया, तो अगर ऊपर ऊपर रहा तो नामी परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। ये विषय विकार इत्यादि आकर के अंदर ले आत्म रस को खत्म कर देंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस नाम को जैसे बीज को सुहागे से मिट्टी से एक कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसे इस नाम को जो हमने बोया है इस मन के अंदर, इस तन के अंदर, अब संतोष का सुहागा देते हैं। संतोष यानी के सबर और शुक्र में रहना, हर हाल में राजी रहना। यानी के जब हर हाल में राजी रहना शुरू हो गए तो वो जो नाम का बीज बो रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो निरंतरता में बदल जाएगा। अगर हर हाल में राजी नहीं रहेंगे तो हमारी ख्वाहिश, जहां ख्वाहिश प्रकट हो गई, वो जो बीज था बोया हुआ वो खाया गया। किसके द्वारा? ख्वाहिश के द्वारा, इच्छा के द्वारा खत्म हो गया। वो बीज फूटेगा नहीं, फलीभूत नहीं होगा, फल उसको नहीं आएंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इसलिए संतोष धारण करना है कि जीवन के अंदर सबर और शुक्र, जो परमात्मा दे रहा है उसमें राजी। एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से हो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। उस मालिक को नमस्कार करनी बनती है। जब हम नमस्कार करेंगे तो परमात्मा तो रीझ कर खुश होकर के बल्कि ज्यादा खुशी देता है, ज्यादा आनंद देता है। आनंद चाहने से उतना आनंद नहीं मिलेगा, जबकि संतोष धारण करने से आनंद ज्यादा मिल जाता है। तुम्हारे पास एक नौकर है, कुछ मांगता नहीं, कुछ उसकी डिजायर नहीं, तुम उसको बहुत कुछ देते रहते हो। बहुत कुछ देने के बाद भी मन में सोचते हो कि पता नहीं बेचारे को पूरा मिला के नहीं मिला, और मांगने वाला नहीं उतना मांग पाता, उतना ले पाता। तुम कहते हो क्या हर टाइम मांगता रहता है, तेरे को इतना देते हैं फिर भी तेरी तसल्ली नहीं होती। और अगर नहीं मांगता तो फिर तुम जो भी देते हो तुम्हें लगता है कि मैंने थोड़ा दिया, अर्थात तुम्हारा दिल भी ले लेगा ना मांगने वाला। तो ऐसे ही जब संतोष होगा, नाम सिमरण करते हुए संतोष धारण करेंगे संसार में, कुछ मांगेंगे नहीं परमात्मा से, तो परमात्मा बहुत कुछ देता देता भी सोचेगा कि शायद अभी इसे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। वो आखिर देता देता एक दिन खुद ही आ जाएगा कि मैं ही हूं, अब से और कुछ रहा नहीं। परमात्मा को खुद आना पड़ता है। आया गुरु नानक के पास, कबीर के पास, फरीद के पास, इन सबके पास आया जो भी यहाँ दर्द हुए हैं, जिनकी भी वाणी यहाँ आई है। तुम्हारे कहते हैं नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश, के इस संसार में गरीबी वेश क्या, निम्रता के साथ रहना, निर्माणता के साथ रहना, निष्अहंकारता के साथ रहना इस कार्य को करते हुए। जैसे एक हाली का वेश क्या है, हमें लगेगा कि गरीब है, मैले कपड़े हैं, क्योंकि काम जो मिट्टी का कर रहा है। तो ऐसे जो नाम और संतोष में खड़ा हो गया वो इतना निम्रता में हो जाएगा, इतना निम्रता में हो जाएगा कि दुनिया तो समझेगी कि बेचारा ऐसे ही है, पागल है, सीधा है, इसको कुछ समझ नहीं। लेकिन उसने संसार की समझ जहाँ कोई परमात्मा की समझ पा चुका है। हम उसे भले कुछ नहीं जान रहे, लेकिन परमात्मा तो सब कुछ उसको दे रहा है। आपस को जो जाना नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। तो जिसने अपने अंदर इतनी निम्रता ले ली गुरु कृपा से, ये नाम का जप करने से, संतोष धारण करने से, उसी का जीवन भाई अच्छा सच्चा और सुच्चा है।
पाओ कर्म कर जम से ते कर पागठ देख।
तो गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा की कृपा, कर्म नाम कृपा का है और भाव नाम प्रेम का है। हृदय में प्रेम हो और परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, जैसे ही प्रेम और कृपा का संबंध हुआ क्या होगा, जम सी खेती जमेंगी। कौन सी खेती? ज्ञान प्रकट हो जाएगा, क्योंकि बीज जो नाम का बो दिया, अब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो जिसके हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो गया, से कर पागट देख, वो घर, वो इंसान, वो जन भाग्यशाली हो गया, उसको परमात्मा प्राप्त हो गए, उसके अंदर सतोगुण प्रधान, उसका जीवन शांत और सतोगुण और दैवी संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा। उसको फिर और कोई इच्छा चाह नहीं रहेगी, निर्चाह होकर के संसार में विचरेगा, परमात्मा के हुक्म में विचरेगा, आएगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, चलेगा, सब कार्य करेगा। लेकिन करता हुआ सब कुछ, सब किछ करता तब वो करता, करता अपने मालिक परमात्मा करतार को जानेगा। ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो खेती समझो ठीक हो गई, तो हमारा जीवन यहाँ सफल हो गया। टाइम काफी हो गया, वक्त को नजरअंदाज रखते हुए यही भोग डालते हैं, बाकी शब्द फिर जैसे परमेश्वर चाहेंगे उसका विचार गुरु कृपा से हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री।